निशा ने आशिका की मुंह दिखाई की रस्म का कहकर उसे घर पर ही रोक लिया था, लेकिन जब मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई तब वहां आशिका के बजाय आशी सबके सामने बैठी हुई थी। हालांकि निशा को ये सब काफी अजीब लग रहा था, लेकिन आशिका साथ देने का वादा करने के बाद वो अपने कदम पीछे नहीं ले पाई थी। गौतमी ने भी आशिका साथ दिया और सबके सामने उसे ही राजवंश खानदान की बहू बताया। ऊपर से आशी ने सबके सामने ये कह दिया कि आशिका निशा की रिश्तेदार है, जो अभिमान को काफी समय से पसंद करती है। लोग आशिका को गलत नज़रों से देखते हुए उसे दूसरी औरत तक समझने लगे थे, लेकिन ठीक उसी वक्त पर अभिमान वहां पहुंच गया था। उसने सबके सामने आशिका को अपनी पत्नी बताया। अभिमान को अब आशिका को वहां छोड़ने के अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। वो आशिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाना चाहता था, लेकिन आशिका ने उसे वहीं पर रोक लिया था, जिस पर अभिमान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। डोंट टेल मी कि तुम्हें अभी भी यहां पर रुकना है। क्या तुम्हें देख नहीं रहा है कि ये तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं और मैं ये नहीं देख सकता? अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी मेहनत बर्बाद हो। मैं इतने अच्छे से तैयार हुई थी और इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। मैं किसी तरह की लड़ाई या बहस नहीं चाहती, लेकिन मैंने यही सोचा था कि पहली बार मैं किसी रिचुअल का हिस्सा बनूंगी, आशिका ने अभिमान की तरफ देखकर कहा। अभिमान आशिका को इतना तो जानने लगा था, उसे दूसरों की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो पत्थर की तरह मजबूत हो गई थी और इस तरह के रिश्तों और रस्मों में तो वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। अभिमान ने गहरी सांस ली और फिलहाल बिना किसी तमाशे के आशिका का हाथ पकड़कर उसे वापस सबके सामने लेकर गया। उसने आशी को वहां से हटाकर आशिका को वहां बैठा दिया। अभिमान खुद उसके पास में बैठा था। आशी और बाकी लोग हैरानी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे कि आखिर वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अभिमान ने आशिका का दुपट्टा लेकर उसका चेहरा ढक दिया था और फिर मुंह दिखाई की रस्म निभाते हुए उसका घूंघट हटाया और मुस्कुराकर उसका चेहरा दिखाया। इस घर की नई बहू सच में बहुत खूबसूरत है और काफी टैलेंटेड भी। इतनी टैलेंटेड कि उसके टैलेंट्स उसकी खूबसूरती को भी फीका कर देते हैं, अभिमान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। ये तुम क्या कर रहे हो? गौतमी ने हैरानी से पूछा। अभिमान ने आंखें घुमाई और उनकी तरफ देखकर कहा, आपको दिख नहीं रहा कि मुंह दिखाई की रस्म कर रहा हूं? मैं इन सब में नहीं मानता और मुझे पूरा यकीन है कि इसे भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये करना चाहती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी हर एक डिमांड को पूरा करूं। आप लोगों ने जो हरकत की है उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं है कि आप मेरी वाइफ का अच्छे से वेलकम करेंगे, तो मेरे होते हुए इसे किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं खुद ही ये सब निभाऊंगा। आप लोग यही करते हैं ना, पहले चेहरा देखकर उसकी तारीफ करते हैं। अभिमान की बातें सुनकर आशी खा जाने वाली निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। साथ ही उसे अफसोस भी हो रहा था कि अभिमान ने कभी ये रूप उसके सामने क्यों नहीं दिखाया था। वो तो उसके सामने जाते ही चिढ़ जाता था। फिर इस आशिका में ऐसा क्या था जो वो उसकी छोटी सी डिमांड को इतने रोमांटिकली पूरा कर रहा था? उन्हें जवाब देने के बाद अभिमान ने आशिका की तरफ देखकर कहा, चेहरा देखने के बाद गिफ्ट भी दिया जाता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिलहाल तो कुछ भी नहीं, मैं इसे बाद के लिए सेव कर लेती हूँ, और थैंक यू सो मच, आशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया और सबके सामने अभिमान के होठों पर हल्का सा किस कर दिया। अभिमान के गाल लाल हो गए थे और उसका मन कर रहा था कि अभी वो खुद को उनके सामने से हायब कर ले। आशिका के लिए भले ही ये सब अजीब नहीं था, पर अभिमान और वहां बैठे लोग उन दोनों को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। कितनी बेशर्म लड़की है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गौतमी जी कि सिंघानिया फैमिली के बजाय इस लड़की की शादी अभिमान से हुई है, एक औरत ने तंज कसते हुए कहा। आशिका ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बाकी लोगों का भी मुंह बन गया था। वहीं अभिमान ने आशिका का हाथ पकड़कर कहा, ऑफिस में बहुत सारे काम हैं, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को यहाँ टाइम वेस्ट करके इन लोगों की फालतू बातें सुननी चाहिए, चले यहाँ से। आशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और अभिमान के साथ वहां से जाने लगी। जाते हुए अभिमान की नजरें निशा से जा टकराई थी। अभिमान की निगाहें सख्त हो रही थी, तो वहीं निशा ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। अभिमान एक पल के लिए निशा के पास रुका और बिना किसी भाव के बोला, मुझे और लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और मुझे पता था कि वे ऐसी घटिया हरकत कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे इन सब की उम्मीद नहीं की थी मॉम। निशा के पास अभिमान की बात का कोई जवाब नहीं था। अभिमान आशिका को वहां से लेकर चला गया था। आशी गुस्से से जलती हुई आंखों से उन्हें जाते हुए देख रही थी। वहीं आशिका ने अचानक पलटकर आशी की तरफ देखा। वो आंखों ही आंखों में उसे चैलेंज दे रही थी, जिससे आशी का गुस्सा और भी बढ़ गया था। बाहर आते ही अभिमान के चेहरे पर मायूसी के भाव थे। भले ही आशिका को इन सबसे बुरा ना लगा हो, लेकिन जो भी हुआ उससे अभिमान को बहुत तकलीफ हुई थी, खासकर निशा के बिहेवियर से। आशिका ने अभिमान की तरफ देखा, वो उसके बिना कुछ बोले ही सब समझ गई थी। आशिका ने अभिमान के हाथ को सहलाकर कहा, मुझे लगा था कि ऐसी फैमिली के साथ रहकर तुम स्ट्रांग हो गए होगे। मुझे बस मॉम की वजह से बुरा लग रहा है, न जाने क्यों उन्हें ये लगता है कि अगर मिस्टर राजवंश तुम्हारे पूछे पड़े हैं तो उसका कारण तुम ही हो, ऊपर से तुम मेरे लिए सही नहीं हो, अभिमान ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया।
वो क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही जो भी हुआ इससे भी मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बस मुझे एक चीज का बुरा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, आशिका ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। अभिमान ने बिना कुछ कहे उसकी बात पर सिर हिला दिया था। वे दोनों गाड़ी में थे और गाड़ी में बैठने से पहले अभिमान ने एक बार फिर आशिका के चेहरे की तरफ देखा। वो बेपरवाह लग रही थी। अभिमान ने गाड़ी स्टार्ट की। उसने मन ही मन कहा, कई बार तुम्हारे इस तरह रोबोट की तरह बिहेव करने पर मुझे अजीब जरूर लगता है, लेकिन काश मैं भी तुम्हारी तरह होता तो इन सब के बिहेवियर को देखकर मैं इतना हर्ट नहीं होता। तुम हर तरीके से परफेक्ट हो आशिका, काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। अभिमान भले ही कितना भी जताने की कोशिश कर ले, लेकिन हाँ, वो काफी इमोशनल था। गाड़ी में बैठी हुई आशिका ने महसूस किया कि अभिमान बिल्कुल चुप था और उसका मूड भी अपसेट था। वो उसका कारण समझ सकती थी। आशिका को नहीं पता था कि उसका मूड कैसे सही किया जा सकता है। उसने पहले कभी किसी के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाले थे, लेकिन इस बीच उसकी नजर एक मॉल की तरफ गई। उसने अभिमान का हाथ पकड़कर जल्दी से कहा, अभिमान स्टॉप द कार। अभिमान ने साइड में जाकर गाड़ी पार्क की और फिर हैरानी भरी नगाहों से आशिका की तरफ देखने लगा। आशिका ने जल्दी से कहा, मैंने अभी मॉल देखा और मुझे शॉपिंग करनी है। तुमने थोड़ी देर पहले मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे, मुझे अभी गिफ्ट चाहिए। तुम मुझे नॉर्मली भी शॉपिंग करवाने का बोल सकती हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन क्या सच में तुम्हें गिफ्ट में शॉपिंग ही चाहिए? तुमने इसे बात के लिए सेव किया था तो तुम अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकती हो, अभिमान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मुझे गिफ्ट में शॉपिंग करना नहीं बल्कि तुम्हारा टाइम चाहिए। तुमने कहा था ना कि तुम लेट हो रहे हो और ऑफिस में काफी काम है, आशिका ने जवाब दिया। मैं कितना भी बिजी क्यों ना रहूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फ्री हूं। चलो चलते हैं, अभिमान ने जवाब दिया।
गाड़ी से बाहर निकलने से पहले अभिमान ने राघव को मैसेज कर दिया था कि उसे आने में थोड़ी देर हो सकती है। अभिमान आशिका को लेकर मॉल में चला गया था। दूसरी तरफ आशी इस वक्त गुस्से से भरी हुई थी और तृप्ति के साथ थी। उसका प्लान बुरी तरह फेल हो गया था। ऊपर से जिस तरह से आशिका और अभिमान ने सबके सामने उसका अपमान किया था, उससे वो और भी ज्यादा चिढ़ गई थी। वो लड़की है या रोबोट, इतनी इंसल्ट करने के बाद भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तक नहीं बदले। जानवरों के साथ भी बुरा बर्ताव किया जाए तो एक बार के लिए उन्हें भी बुरा लगता है, पर वो लड़की ऐसा लगता है जैसे पत्थर की बनी हुई है। उसकी निगाहें बिना किसी भाव के सबको देखती रहती हैं। आशी ने तृप्ति की तरफ देखकर पैर पटकते हुए कहा। आशी इस वक्त तृप्ति के साथ उसके घर पर थी और सेलिना भी वहीं पर थी। उसने उनकी बातें सुनी और वो कॉफ़ी लेकर उनके पास आई थी। एक बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, वो लड़की सच में इंसल्ट प्रूफ है, और तुम्हारे उस जानवर वाले एग्जाम्पल पर मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मॉम ने उसकी परवरिश जानवरों से भी बदतर तरीके से की है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उस पर किसी चीज़ का असर होता होगा। वो हमेशा अकेली रही है, लोगों के ताने सुने होंगे और बुरे बर्ताव को भी उसने झेला होगा। उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, शी इज़ एज कोल्ड एज आइस। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी एनर्जी आशिका के साथ तो वेस्ट मत करो, सेलिना आशिका मजाक बनाते हुए बोली। उसकी आंखों में उभरी वो शरारती मुस्कुराहट आशिका मजाक उड़ा रही थी, जिससे उसे और भी गुस्सा आ रहा था। बहुत पता है तुम्हें उसके बारे में, आशी सेलिना को घूरते हुए बोली। अगर उसके बारे में इतना ही अच्छे से स्टडी किया है तो कम से कम थोड़ा बहुत उससे कुछ सीख ही लेती। वो लड़की लाख बदतमीज़ और अजीब सही, लेकिन उसमें इतने एटिकेट्स तो हैं कि जब कुछ लोग बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलती। सेलिना ने उसे देखकर मुंह बनाया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले तृप्ति ने उसकी तरफ देखा और शांत रहने का इशारा किया। आशी पहले से ही परेशान थी, ऐसे में तृप्ति नहीं चाहती थी कि सेलिना उसका और मूड खराब करे। तृप्ति काफी देर से आशिका के बर्ताव के बारे में गौर से सोच रही थी। उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें सेलिना की बात का बुरा लग रहा होगा, लेकिन वो सच कह रही है। उस लड़की पर सच में किसी की बातों का असर नहीं होता, लेकिन हाँ, उसकी भी एक कमजोर कड़ी है। किसी और की बातों का उस पर असर ना हो, लेकिन मेरी बातों का जरूर होता है। तुमने कभी नोटिस किया होगा, जब बाकी लोग बोलते हैं तब वो जवाब देना तक जरूरी नहीं समझती, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो वो बहस करने लगती है और मुझे मेरी कमियाँ गिनाने लगती है। मैं उसकी नज़रों में लाख बुरी सही, लेकिन हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। आज भी उसके दिल में ये शिकायत है कि मैंने उसकी परवरिश अच्छे तरीके से नहीं की। तृप्ति के बताने पर आशी ने भी गौर किया। जब अभिमन्यु और ऋषिका आशिका को शादी के लिए वहां पर लेकर आए थे, तब लोग उसे भला बुरा कह रहे थे और उस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आशिका ने मुंह तक नहीं खोला था। लेकिन जब तृप्ति बीच में आशिका को गलत साबित करने के लिए आई तो आशिका उससे लड़ने लगी थी और उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। यहाँ तक कि उसने आशिका की मुठ्ठियों को कसकर भींचे हुए और आंखों में नमी उतरते देखा था। इसी के साथ तृप्ति के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसने सिर हिलाकर कहा, मैंने पहले इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि मैं उस लड़की के लिए मायने रखती हूँ। बेवकूफ़ लड़की जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने दिल के एक कोने में इस बात का इंतजार कर रही है कि मैं उससे प्यार करूँगी, उसे समझूंगी और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगूंगी।
तो आप उसकी कमजोरी हैं, यही सही मौका है। आप उसके खिलाफ जाने के बजाय उसकी कमजोरी का फायदा उठाइए, आशी जल्दी से बोली। तृप्ति ने भी मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। उन दोनों माँ बेटी को इस तरह आशिका के खिलाफ प्लानिंग करते देखकर सेलिना हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी थी। आज उसे पहली बार आशिका के लिए बुरा लग रहा था। हाँ, सेलिना में कई बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी इस हद तक जाकर आशिका या किसी और को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। अगर उसे तृप्ति के बजाय कोई और अच्छी परवरिश देता तो शायद वो एक बेहतर इंसान भी बन सकती थी, लेकिन तृप्ति ने हमेशा उसे गलत रास्ते पर ही चलना सिखाया था। सेलिना कुछ नहीं बोली और कमरे के अंदर चली गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि तृप्ति और आशी यही नहीं रुकने वाले हैं, वे आशिका के खिलाफ और भी प्लानिंग करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आशिका इस वक्त अभिमान के साथ मॉल में थी और शॉपिंग कर रही थी। आशिका हमेशा की तरह शॉपिंग करने के लिए फीमेल डिपार्टमेंट के बजाय मेल डिपार्टमेंट में चली गई थी और अभिमान ने भी उसे नहीं रोका था। अभिमान को अच्छे से पता था कि उसे इस तरह लड़कों के कपड़ों में देखकर उनके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। किसी और को तो क्या, निशा ही सबसे पहले सवाल उठाएगी, जैसा उसने सुबह किया था। लेकिन आज जो भी हुआ उसके बाद अभिमान आशिका को किसी चीज के लिए नहीं रोकने वाला था। आशिका खुद के लिए कपड़े देख रही थी तो वहीं अभिमान भी उसी के लिए शॉपिंग कर रहा था। जब आशिका ने एक शर्ट के ऊपर हाथ रखा तो ठीक उसी वक्त उसी शर्ट पर यज्ञ ने हाथ रखा था, जो इस वक्त खुद के लिए शॉपिंग करने आया था। आशिका को नहीं पता था कि यज्ञ का सिंघानिया फैमिली के साथ क्या रिश्ता था, लेकिन हाँ, उसने उस दिन यज्ञ को वहां पर देखा था और उसकी आंखों का रंग बिल्कुल उसकी और आशुतोष की तरह था। आशिका यज्ञ की आंखों को ध्यान से देख रही थी तो वहीं यज्ञ की आंखों में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा था।